आर्य शिवी को लेकर आली के घर आया था। वो नहीं चाहता था कि उनके रिश्ते में किसी तरह कन्फ्यूजन रहे, इसलिए वो उससे उसके बारे में सब कुछ बताना चाहता था। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है एंड आई डोंट वॉन्ट कि मैं तुमसे कुछ भी छुपाऊँ। आर्य ने शिवी को वहीं लिविंग रूम में बिठा दिया और खुद अंदर अपने कमरे में आया। उस कमरे में दो अलमारियाँ थीं, उसमें से एक आर्य की थी तो दूसरी आली की। आली की अलमारी में उससे जुड़ी सभी चीज़ें रखी हुई थीं। उस सामान में उन दोनों की यादें और बहुत सी तस्वीरें भी थीं। जैसे ही आर्य ने अलमारी खोली, उसमें आली के कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले वो फ़ोटोज़ और अब ये सब चीज़ें, किसने निकाला होगा वो सब? आली की अलमारी में उन दोनों से जुड़ी चीज़ों को गायब देखकर आर्य परेशान हो गया। शिवी बाहर बैठी थी। आर्य काफ़ी देर से अंदर नहीं आया तो उसने आवाज़ लगाकर कहा, तुम क्या इतनी दूर मुझे यहाँ अकेले बिठाने के लिए लेकर आए थे? उसकी आवाज़ सुनकर आर्य बाहर आया। आई एम सो सॉरी, मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ था पर पता नहीं अब कहाँ चला गया। मेरी एब्सेंस में सिर्फ पीटर अंकल ही यहाँ आते हैं, ज़रूर उन्होंने ही हटाया होगा। ऐसा भी क्या था जो तुम इतने परेशान हो गए? शिवी ने हल्के तरीके से पूछा। कुछ नहीं, बहुत कुछ था शिवी। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करता था। जैसे ही आर्य ने बताया, शिवी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, क्या उसी के लिए तुमने उस दिन रेस्टोरेंट में मुझसे शादी करने के लिए मना किया था? यू डोंट वरी, मैं मम्मा को ना कह दूंगी। आर्य ने शिवी का हाथ पकड़ा और कहा, हे, शायद तुमने मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं जिसे प्यार करता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे गए हुए 3 साल होने वाले हैं। एक एक्सीडेंट में मुझे बचाते हुए उसकी जान चली गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम उसे बहुत मिस करते होगे ना? हाँ, पहले बहुत मिस करता था। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मुझे उसकी उतनी याद नहीं आती। याद है कॉन्सर्ट में मैं बेहोश हो गया था? वो म्यूज़िक ही कुछ ऐसा था कि मेरे दिमाग में उससे जुड़ी सारी यादें ताज़ा हो गईं। उसके बारे में बताते हुए आर्य मायूस हो गया। तुम परेशान मत हो, मैं समझ सकती हूँ कि हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमसे अलग हो जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। तुम मूव ऑन कर रहे हो, इट्स गुड ना? अच्छा हुआ जो तुम्हें उसकी कोई भी याद नहीं मिली, वरना उसे देखते ही तुम फिर से परेशान हो जाते, शिवी ने उसका हाथ सहलाकर कहा। तो क्या तुम्हें हम दोनों के पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुमने तो उसकी फ़ोटो तक नहीं देखी। देखना चाहोगी? आर्य ने पूछा तो शिवी ने नामे सिर हिला दिया। मैं प्रेजेंट में यकीन करती हूँ और आज का सच ये है कि हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और जल्द ही एक भी होने वाले हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं जानना, शिवी ने आर्य के गाल पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा। आर्य ने हाँ में पलके झपकाई। उसने उसे गले लगा लिया और शिवी के बालों को सहलाने लगा। क्या तुम्हारी लाइफ में भी कभी कोई था? डाउट नहीं कर रहा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आर्य ने पूछा। अब तक तो कोई नहीं था। कॉलेज और स्कूल में कई लड़कों ने प्रपोज किया था पर मुझे उनमें कोई अच्छा ही नहीं लगा। अच्छा, मैं तो तुम्हें पसंद होना, कहीं बाद में ये मत बोल देना कि मुझे कई लड़कों ने प्रपोज किया है। उनमें से एक ने तो गाड़ी रोक कर अप्रोच किया था, आर्य ने मजाकिया लहजे में कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं पता था मेरी मम्मा की चॉइस इतनी अच्छी होने वाली है। मैं उस रेस्टोरेंट में जानबूझकर वैसे तैयार होकर गई थी ताकि मुझे देखते ही वो लड़का मुझे मना कर दे, पर उस लड़के को तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे भी दिखो। तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया शिवी, अब तो ये लड़का उम्र भर तुम्हारे साथ रहने वाला है, आर्य ने मुस्कुरा कर कहा। आर्य और शिवी साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसे सब कुछ बताने के बाद आर्य को हल्का महसूस हो रहा था। नंदिनी ने आशुतोष को शिवी की हाँ के बारे में बता दिया था पर इस बारे में उसने अब तक अपने घर में किसी से बात नहीं की थी। जिम ऑफिस से आया नहीं था इसलिए उसने पहले नील को बताना सही समझा। नील को बताने के लिए नंदिनी ने उसे कॉल किया। हे मिसेज वॉटसन, आप उस दिन मुझसे बिना मिले चली गई, आई होप आपके और शिवी के बीच सब ठीक हो, कॉल रिसीव करते ही नील ने कहा। हाँ, हमारे बीच सब ठीक है। पहले वो मुझसे गुस्सा हुई थी पर अब मेरे डिसीजन का रीज़न उसे भी समझ आ गया। कौन सा डिसीजन? नील ने हैरानी से पूछा। जल्दबाजी में तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला, जिम से भी बात करनी है। एक्चुअली मैंने शिवी के लिए एक लड़का पसंद किया है, वो उसे भी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द उन दोनों की शादी हो जाए, नंदिनी ने उसे सब बता दिया। उनकी बातें सुनने के बाद नील को झटका लगा। पर यह जल्दबाजी होगी, उसका करियर अभी शुरू हुआ है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, उसे अभी इंजॉय करने दीजिए। आप बेवजह उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बांधना चाहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है नील, तुम यहाँ लंदन में रहते हो तो तुम्हारे लिए चीज़ें डिफरेंट हैं। हमारे इंडिया में इस उम्र तक घर वाले अपने बच्चों के लिए एक आइडियल पार्टनर ढूंढना शुरू कर देते हैं, वहाँ अक्सर अरेंज मैरिज ही होती हैं, नंदिनी ने हंसकर कहा। वो बात को काफ़ी लाइटली प्रेजेंट करना चाहती थी। क्या शिवी ने हाँ कह दिया है? नील ने पूछा। हाँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी बेटा, मैं उसे फोर्स में ही कर रही हूँ। वो उस लड़के से मिलने गई थी और उसके हाँ कहने के बाद ही बात को आगे बढ़ा रही हूँ। एक्चुअली मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि जल्द ही मेरी शिवी के ससुराल वालों के साथ एक फैमिली डिनर होने वाला है। आई जस्ट वॉन्ट तुम और नितारा वहाँ आओ। तुम दोनों वहाँ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नंदिनी ने प्यार से कहा। जी जरूर, आई विल ट्राई, कहकर नील ने कॉल कट कर दिया। उसे शिवी पर गुस्सा आ रहा था। उसने अब तक उसे कुछ नहीं बताया था और अब शादी तक करने जा रही थी। वहीं नील को सब बताने के बाद नंदिनी आश्वस्त हो चुकी थी। वो उसे बात करके हटी तो उसने देखा जिम वहीं मौजूद थे और उनकी बातों को शांति से सुन रहे थे। तो आपने सब सुन लिया, नंदिनी ने कंधे उचकाकर पूछा। बेशक मैंने सब सुन लिया, तुमने आखिर अपनी जिद पूरी कर ही ली, जिम ने अपने गुस्से को काबू करके कहा। मैं कोई जिद नहीं कर रही हूँ, शिवी भी इसमें खुश है। आपने कहा था कि उसे फोर्स मत करना, मैंने नहीं किया। आपने ये भी कहा था कि अगर शिवी हाँ कह देगी तो आप मुझे कुछ नहीं कहोगे और प्यार से उनकी शादी करवाओगे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि शिवी को अपने डैड की कमी महसूस ना हो, नंदिनी ने इमोशनल होकर कहा। जिम के पास आगे कुछ कहने को नहीं था। उसने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, आशुतोष से बात हुई तुम्हारी? उसके बेटे का क्या डिसीजन है? उसे भी शिवी पसंद आ गई है। मैं चाहती हूँ हमारा एक फैमिली डिनर हो जहाँ हम उनकी सगाई और शादी से जुड़े डिसीजन ले। मैं अब और देर नहीं करना चाहती। तुम्हारी जिद पूरी हो रही है ना? पहले तुमने शिवी के लिए लड़का ढूंढा, शिवी ने भी उसे पसंद कर लिया। अब सब काम जल्दबाजी में हो या देरी से क्या फर्क पड़ता है? उन दोनों को थोड़ा टाइम दो। अरेंज मैरिज में एक दूसरे को समझने का मौका बाद में मिलता है। वो दोनों पहले एक दूसरे को समझ ले ताकि डिवोर्स की नौबत ना आए। जिम अपनी तरफ से इस रिश्ते को डिले कराने की कोशिश कर रहे थे। नंदिनी अपनी जिद पर टिकी थी। उसने जवाब में कहा, ओके सगाई तो कर लेते हैं ना, बाकी बच्चों पर छोड़ देते हैं, जैसे वो डिसाइड करे। नंदिनी ने पहले शिवी को तो फिर उसके हाँ कहने के बाद जिम को भी मना लिया था। उसने आशुतोष से बात करके कल रात के लिए एक फैमिली डिनर अरेंज किया था जहाँ दोनों फैमिलीज आपस में मिल सके।
नंदिनी सब कुछ अपनी तरफ से ही डिसाइड कर रही थी जबकि जिम अंदर अपने कमरे में परेशानी में इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। मुझे कुछ भी करके इस शादी को रोकना होगा, अगर इन दोनों की शादी हुई तो तूफान आ जाएगा जिसमें हम सभी डूब जाएंगे। क्या आर्य जानता नहीं कि शिवी कौन है? अगर नहीं जानता तो उसे जानना होगा, जिम ने गुस्से में कहा और किसी को कॉल किया। जिम वॉटसन स्पीकिंग, आखिर कर क्या रहे हो तुम? लगता है अपने दुश्मनों से नजरें हटा ली हैं। मैंने दुश्मनों से नजरें हटाना नहीं, दुश्मनों का हटाना सीखा है। तुम्हें याद हो तो उसे हम बहुत पहले अपने रास्ते से हटा चुके हैं। सामने से एक आदमी की आवाज आई। नहीं, तुमने उसे पूरी तरह से नहीं हटाया है, बस उनका इलाज किया था। ऐसा समझ लो कि जख्म फिर से हरा होने को है, जिम ने गुस्से में कहा। हाँ सुना मैंने, कोई उस केस को फिर से रीओपन करवा रहा है। अय्यर को सजा हो गई थी, उसके बावजूद कोई उस सजा को चैलेंज करने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि वो लोहे की दीवार पर अपना सिर भिड़ा रहे हैं। उन्हें अपने हाथ पैर मारने दो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अय्यर कभी सच नहीं बताएगा, वो इस बात पर टिका रहेगा कि उसने उस रात उन दोनों पर हमला किया था। उस आदमी की आवाज काफी सख्त थी, आवाज से ही वो खतरनाक लग रहा था। और क्या हो, कोई ऐसा आ जाए जो ये प्रूव कर दे कि अय्यर झूठ बोल रहा है? सोच लो, जिस दिन ये सच सामने आ गया उस दिन ना तो तुम बचोगे और ना मैं, कहकर जिम ने कॉल कट कर दिया। उस आदमी से बात करने के बाद उसकी नजर सामने की दीवार पर गई जिसमें नंदिनी और उसकी फोटो लगी थी। किसी महान इंसान ने बिल्कुल सही कहा है, आपका प्यार आपको लाचार और कमजोर कर देता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे इतना अटैचमेंट हो जाएगा नंदिनी, मैंने सिर्फ तुम्हारा यूज करने का सोचा था और अब हालात ये हो गए हैं कि मैं तुम्हारी जिद के आगे कुछ नहीं कह पा रहा। मुझे खुद को पहले की तरह सख्त करना होगा वरना तुम अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर दोगी। जिम ने अपना कोट उठाया और कमरे से बाहर आ गया। बाहर उसने देखा नंदिनी किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो कॉल पर बात करते हुए डिजाइनर और सगाई के बाकी अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रही थी। उसकी बातें कानों में पड़ने पर जिम का गुस्सा और बढ़ गया और वो वहां से बाहर जाने के लिए निकल गए। ओके, अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि पास्ट में जो भी हुआ उससे जिम भी जुड़ा हुआ है। अब उसका क्या कनेक्शन है ये आगे जाकर रिवील हो जाएगा। अपने बदले के चक्कर में कहीं वो शिवी और आर्या का रिलेशन खराब ना कर दे। आपको क्या लगता है, अगर आर्य को शिवी के सच पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा?